यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति तत्र को मोहा का शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति। जो योगी सब प्राणी मात्रों को, जितने भी जीव हैं, अपने आत्मा के समान ही समझता है। जैसे मेरे आत्मा में सुख दुख आदि होते हैं, या जैसे मुझे अनुभूति होती है सुख दुख की, ऐसे ही दूसरों को भी होती है। अपने आत्मा के समान दूसरों को समझता है। तत्र को मोहा का शोकः, उसको न तो किसी के साथ मोह होता है और न किसी से उसको शोक होता है। एकत्व निपश्यता, जो अपने समान ही एकत्व भाव सब में रखता है, जैसा मैं हूँ ऐसे ही आप भी हैं। तो ये योगी का बहुत ऊंचा लक्षण किया है इस मंत्र। कल प्रसंग चल रहा था जल के द्वारा उपासना और शरीर में परमात्मा के साक्षात्कार का। तीन प्रकार का जल शेष रहता था, एक स्नेह, श्वेत और मूत्र। तो स्नेह भी शरीर में स्वाभाविक ही, वैसे स्नेह गुण है जल का, जल से ही स्नेह चिकनाहट पैदा होती है। ये जितने भी आयल आदि हैं, इनको जल का ही भाग कहा गया है, जल के ही परिणाम विशेष हैं। हमारे शरीर में भी जो मेद है और मज्जा है, ये भी स्नेह के ही भाग हैं। मेद जो है, ये तो त्वचा के नीचे रहता है, जैसे ये पेट की त्वचा है, गले की ये त्वचा है, यहाँ मोटापन ये आ जाता है और पेट जो बढ़ जाते हैं तो यहाँ ठहरता है मेद। और मज्जा जो है, ये हड्डियों में ठहरती है। ये दोनों पीले से पदार्थ के द्रव्य होते हैं स्नेह को लिए हुए। एक बार मैं किसी होटल में भोजन कर रहा था, तो एक मांस खाने वाला वो भी बैठा था, तो एक हड्डी थी इतनी बड़ी मांस में, अब उसको ठोक 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 करके चूस रहे। तो ये जो मज्जा है, ये हड्डियों में रहती है और मांस खाने वालों को चूसने में उसका स्नेह, उसका स्वाद कुछ भिन्न प्रतीत होता है। तो ये हड्डियों को पुष्ट किया करती है, हड्डियों की वृद्धि, हड्डियों में नरमाई, हड्डियों में तरलता, हड्डियों का विकास इसके द्वारा ही होता है। और ये मांस की पेशियों के ऊपर भी ये मेद जमा हुआ होता है। तो ये सब इस जल के ही भाग विशेष होते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। तो इसलिए इसके भी सात्विक, राजस और तामस भेद हुआ करते हैं। जो हम बाहर के पदार्थों से सेवन करते हैं वो तो राजसिक हो जाता है, और जो स्वाभाविक ही स्नेह हमारे शरीर में जल का परिणाम विशेष होता है। छोटा सा नवजात बच्चा होता है, उसका शरीर कितना कोमल होता है, कितना मुलायम, स्नेह चिकना आदि कुदरती लेकर के आता है। तो स्नेह जो है, ये जल का ही गुण विशेष, धर्म विशेष होने से हमारे जीवन का, शरीर के जीवन का आधार रहता है, और ये भी सात्विक, राजस और तामस हुआ करता है। तो तामसिक स्नेह भी बीमारियों में पैदा होता है, राजसिक स्नेह भी इन पदार्थों के सेवन करने से होता है, और सात्विक स्नेह स्वाभाविक ही इसमें पैदा होता है। तो सात्विक स्नेह जो है, ये योगी जितने आसन वगैरह करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इस स्नेह इनके शरीरों में लचक पैदा करता है, नरमाई पैदा करता है। कैसे भी तोड़ने फोड़ने करने की, तो जैसे मालिश आदि की जाती है, ये भी अंगों को मुलायम बना देती है, अस्थियों को मुलायम बना, चमड़ियों को मुलायम बनाती है। तो इसके सात्विक राजस्थान इस भेद को शरीर में रख करके और समझना चाहिए, इसके विज्ञान के जल के विज्ञान को, अगर ये हमारे शरीर में ना हो तो हमारे शरीर की स्थिति क्या होगी। सात्विक राजस्थानस तीन प्रकार का होता है। जिस वक्त ध्यान और समाधि की अवस्था में योगी बैठता है या कीर्तन आदि करता भक्ति भाव से, तो उस वक्त आठ प्रकार के सात्विक भाव विकार हुआ करते हैं, जैसे रोमांच खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, अश्रु का आना, आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगा और पसीना भी आया करता है, हर्ष से प्रसन्नता से पसीना भी आता है, वह समाधि की अवस्था में जिस वक्त भाव विकार होता है परमात्मा के प्रति, भक्ति का भाव होता है, या किसी बहुत देर के बाद कोई अपना स्नेही प्यारा मिला है, कोई मित्र मिला है, या कोई और परिवार का मिला है, या माता पिता या पुत्र मिले हैं, पुत्री मिले हैं, वहाँ भी वह श्वेत आ जाया करता है आलिंगन में, स्नेह और प्यार करने में। तो ये और समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, कीर्तन की अवस्था में जो आता है, ये सात्विक कहलाता है। और ये अनेक प्रकार के रोगों को अंदर, जो शरीर के अंदर रोग होते हैं पसीने के द्वारा, अनेक प्रकार के रोग भी निकल जाते हैं, परंतु वो तब निकलते हैं जब रज प्रधान होता है, जब विशेष उत्तेजना शरीर में हुआ करती है, तो वो रोगों को भी लेकर के निकला करते हैं। जैसे युद्ध के समय में, भय के समय में, लड़ाई के समय में, पर्वतों पर चढ़ने के समय में, और खेल कूद आदि में, ऐसे अवसरों में जो श्वेत पसीना आता है, वो रजत प्रधान हुआ करता है। और स्वाभाविक ही गर्मी का मौसम है, वैसे ही सोते हुए भी आता है, निद्रा की अवस्था में भी आता है, तो वो तमः प्रधान कहलाता है, भाव विकारों को पैदा करता है और राजसिक भावों को भी पैदा करता है, तामसिक भावों को भी पैदा करता है। इसकी तीनों अवस्थाओं को ध्यान का विषय बना करके कि शरीर के साथ इसका क्या संबंध है, कहाँ से किस देश से, कि जितने हमारे सारे रोम रूप में शरीर के बाल हैं, इनके छिद्रों से भी श्वेत निकला करता है, तो सारे शरीर में व्याप्त सा ये जल बना हुआ है, और गर्मी के मौसम में सारे शरीर से निचड़ने लगता, पानी बह करके चलने लगता पसीने के रूप में। तो ये शरीर के पोषण का भी हेतु है और रोग निवृत्ति का भी हेतु है। और इससे बाद का फिर अंतिम जो विकार है सारा मूत्र के रूप में निकलता है। मूत्र भी सात्विक राजस्तामस भेद से होता है। जब शरीर योगी का निरोग रहता है सब प्रकार से, तब सात्विक पेशाब मन बना करके निकला करता है, और जब रोग विशेष हो जाया करते हैं या कोई ऐसे अवसर आते हैं लड़ाई झगड़े आदि के, तो उन अवसरों में ये राजसिक बन जाता है, पीलापन आदि, मूत्र कृच्छ्र आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाया करते हैं पेशाब संबंधी। तो उन रोगों में मूत्र कृच्छ्र हुआ, सुजाक आक्षक आदि हुए, ऐसे रोगों में ये रजय प्रधान इसकी अवस्था हो जाती है। और तमय प्रधान जैसे निद्रा वगैरह की अवस्था में होता है, स्वाभाविक ही आते हैं। तो ये अंतिम विकार कहलाता है। कितना स्वच्छ निर्मल जल पान किया था और कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, किस रूप में ये प्रत्येक ग्रंथियों से होता हुआ आया है, ऊपर से चलकर अगर मुख से पिया है तो इन सब ग्रंथियों से, कंठ आदि, लंग्स आदि, यकृत आदि, इन सब से ग्रंथियों से, आमाशय पक्वाशय होकर के फिर छोटी आंतों में जाकर, गुर्दों में जाकर पहुंच करके क्षार के रूप में, दूसरे रूप में ये वह शरीर के अनेक रोगों को लेकर के साथ निकलता है। तो ये भी सात्विक राजस्थान से भेद से। तो इस प्रकार जल के सारे स्वरूपों को ये 30 प्रकार का जल बना, शरीर के भेद से 30 प्रकार का ये हुआ, ये हमारे स्थूल शरीर के पालन पोषण रक्षण का हेतु बना हुआ, जीवन का हेतु बना है। इस जल को माध्यम बना करके प्रत्येक अवस्था में चेतन के साथ इसके संबंध को देखना चाहिए कि चेतन का संबंध उस देश में भी वर्तमान है नहीं जहाँ इसकी सात्विक राजस और तामस अवस्थाएं बनती जा रही है जिन ग्रंथियों में जिन अंगों में। तो ये है इसके विज्ञान का विषय, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का आधार है, शरीर को संगठित किए हुए इसको बनाए हुए है। तो इतने प्रकार इसके 10 और फिर उनके 30 प्रकार का ये जल हमारे शरीर में वर्तमान है, जो पंचभूतों का ही उनमें जल जो है उसका ही परिणाम विशेष है। तो इसको उपासना का विषय बना करके बाहर भी अंदर भी आत्मा की और परमात्मा की व्यापकता का अनुभव करना चाहिए। जैसे जल के अंदर उष्णता हमारे स्पर्श में आ जाती है, ऐसे इस जल के द्वारा भी चेतना के स्पर्श की अनुभूति हो सकती है। जैसे तेज के द्वारा भी वह स्पर्श की अनुभूति होती है, प्राण के द्वारा भी स्पर्श की अनुभूति होती है। जो स्थूल पदार्थ हुआ करते हैं वो स्पर्श का हेतु बना करते हैं और सूक्ष्म भी बनते हैं। जैसे सूक्ष्म वायु इसके प्रेक्षागणीय स्पर्श का हेतु बनते हैं, तो जल भी स्पर्श का हेतु बनता है। इसको भी माध्यम बना करके चेतन का इसमें व्याप्त व्यापक भाव संबंध है। तो इस प्रकार व्याप्ति की अनुभूति इस शरीर के अंदर जल के द्वारा योगी को करनी चाहिए। शरीर का भी विज्ञान हो जाता है और इससे फिर वैराग होकर के मोक्ष की उपलब्धि भी होती है। शरीरों में सात्विक जल की प्रधानता होती है क्योंकि इनके कर्म और सांसारिक लोगों की अपेक्षा बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे आजकल आप लोगों का जीवन बीत रहा है, सात्विक न किसी प्रकार का पाप कर्म करते हो, न कि कोई बुरे पदार्थों का सेवन करते हो, यम नियमों का पालन करते हो, तो इस प्रकार के पुण्य कर्मों से वह इसमें सात्विकता आती है और इसका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। योगियों का जीवन सांसारिक लोगों से, जो भोगी हैं उनसे योगियों का जीवन ऊंचा माना जाता है। आप लोग अगर संसार में जाकर के कोई व्यवहार भी करेंगे तो ये जो आपके अंदर सात्विकता है, यम नियमों का आप पालन करते हैं, वहां भी जाकर के आपके जीवन में आपके कर्मों में सात्विकता बनी रहेगी। अगर आपके समान संसार के सब लोग हो जाएं तो चोरी हिंसा डाके लड़ाई झगड़े पाप ये सब कर्म संसार से खत्म हो जाएं और सारे संसार के मनुष्य मात्र सदा सुख का अनुभव करने लगे, जैसे कि आप लोग यहाँ रहते हुए सुख शांति का अनुभव कर रहे हो। तो इसलिए योगी के जीवन की विशेषता होती है सप्त प्रधान। और जो सांसारिक भोगी लोग होते हैं उनके अंदर रजय प्रधान जल की प्रधानता होती है, और जो तामसिक निकृष्ट कर्म करने वाले होते हैं, बहुत नीच से कर्म करने वाले होते हैं, घृणित से कर्म करने वाले होते हैं, अत्यंत पाप कर्म करने वाले होते हैं, उनके शरीर का जल भी दूषित होकर के तामसिक हो जाया करता है। तो इसलिए इस जल की विशेषता हमारे जीवन में यही है कि हमारे जीवन का आधार हो करके और हमें परमात्मा के साथ मिलाने की योग्यता शक्ति और सामर्थ्य रखता है। नैयायिक और वैशेषिक कार्य तो पार्थिव शरीरम कहते हैं कि शरीर पृथ्वी से ही बना हुआ है, बाकी और जो पूर्ण हैं इसमें केवल सहकारी मात्र हैं। तो इसकी ही प्रधानता, क्योंकि पृथ्वी का ही अंश और विकार इसमें अधिक है शरीर के अंदर, तो इन्होंने इसके 10 भाग माने हैं। तो पृथ्वी का भाग सबसे इसमें जो प्रधान रूप से है, हड्डियां अस्थियां जिनको कहते हैं, और हड्डियों का रूप ये दांत भी है, ये भी एक प्रकार की हड्डियां ही है। तो सबसे कठोर और सख्त भाग ये है पार्थिव तत्व में। और इसके बाद का दूसरा भाग मानते हैं ये नख, ये दाढ़ी, केस और सारे शरीर के रोग। तो ये भी या इस शरीर के अंदर दूसरा कठिन भाग है। ये नाखून में गलते नहीं है जल्दी, वो या सख्त चीज है रहने वाली, और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो जैसे भालुओं के होते हैं बड़े बड़े नाखून वगैरह, ये मनुष्य के भी बन जाएंगे। तो ये नख और लोम आदि का भाग, ये दूसरा पृथ्वी का सख्त भाग है। और तीसरा भाग शरीर में इसका है ये जो नस और नाड़ियां हैं, क्योंकि ये भी बहुत, ये नस नाड़ियां जैसे ग्रंथि है ना पल्हिया आदि, ये भी मोटी बड़ी नाड़ियां कहलाती हैं। इनमें भी सामान जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, ये बड़ी जैसे आते दोनों हैं, आते भी तो बड़ी नाड़ी है, उनमें बहुत भाग मल का पेशाब आदि का रहता है, तो ये नस और नाड़ियां इनको कहलाती है। तो बड़ी बड़ी जैसे ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, ये सब नाड़ियां कहलाती हैं। और ये बड़ी आंत और छोटी आंत ये भी, और ये जो सात छह ग्रंथि हैं या जिगर की है, आमाशय की है, पकवाशय की है, और बड़ी आंत छोटी आंत, प्लिया है, तिल्ली है, और ये हृदय है, ये भी एक प्रकार की बड़ी बड़ी नाड़ियां ही हैं, ये धारण करती हैं। तो ये सारा ऊपर से लेकर के जैसे नीचे की तरफ को इसकी शाखा निकली है, ये भी वृक्ष के समान ये शरीर है। ऊर्ध मूलम अर्ध शाखा इसको कहा है, ऊर्ध ये मूल इसका भाग सिर है, और नीचे को हाथ पैर आदि इसकी शाखाएं हैं। तो ये एक प्रकार से शरीर इसमें से मस्तिष्क में से निकल करके गर्भाधान आदि संस्कार समय के, जब बालक का प्रादुर्भाव जन्म आदि होता है, तो सबसे पहले ये बड़ी अस्थि ही ये सिर की बनती है। तो इसमें से ही जैसे अंकुर फूट करके किसी पौधे का, वृक्ष का, भूमि में कोई बीज बोया हुआ हो, तो एक प्रकार से बीज का रूप ये मस्तिष्क बनता है, और जैसे उसमें से अंकुर निकल करके भूमि से बाहर फैलते हैं, ऐसे ही इसमें से ये नस नाड़ियां आदि अंकुर के रूप में, हाथ पैर आदि नीचे को फैले शाखाओं के रूप में। तो इसको ऊर्ध मूलम अध शाखा कहा है, ऊपर को इसका मूल है, नीचे को इसकी शाखा है। तो ये सारा प्रधान रूप से पृथ्वी का ही भाग है, ये तीन चीजें। फिर चौथी चीजें हैं ये जो मांस की पेशियां हैं, जंघा के अंदर पेशी है, ये मांस की पेशी है, वक्षस्थल में पेशी है, यहाँ मांस की गद्दी हैं, लंग्स के आसपास इधर पेस्ट की भाग में ये मांस की पेशी ये हैं। तो ये मांस की पेशी ये भी पार्थिव ही भाग है। तो ये है इसमें एक प्रकार से चौथा भाग। पांचवा भाग है इसमें सूक्ष्म ज्ञान और गतिवाहक तंतु, सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां नसें कहते हैं, नस नहीं, नस भी मोटी होती है, सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान वाहक है, बारीक नसें कहेंगे और क्या कहेंगे, या नाड़ियां कहेंगे, या ज्ञान वाहक तंतु शब्द आता है इनके लिए, या सूक्ष्म सूक्ष्म इस त्वचा के अंदर सारा जाल फैला हुआ है ज्ञान और गति वाहक तंतुओं का, और मांस की पेशियों में भी फैला हुआ है त्वचा जो है। सात प्रकार की त्वचाएं हैं शरीर के ऊपर, तो सात प्रकार की त्वचाओं से ये नस नाड़ी मांस की पेशी आदि अस्थियां आदि सब ढकी हुई है। तो सात त्वचाओं के अंदर ज्ञान वाहक और गति वाहक सूक्ष्म सूक्ष्म तंतुओं का जाल फैला हुआ है, इसलिए हमें सब जगह स्पर्श आदि से संवेदन होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान वाहक तंतु मानने पड़ेंगे गति वाहक, तो गति का जिनमें प्राण गमन करता है ऐसे तंतु है, क्योंकि अगर तंतु में प्राण गमन नहीं करेगा तो तंतुओं में भी रक्त का संचार नहीं होगा और गति भी होगी। तो इसलिए प्राण सूक्ष्म रह करके तंतुओं के अंदर गति जारी रखता है, शरीर में चेतना का प्रसार सा बनाए रखता है, और एक गति रूप से और एक ज्ञान, क्योंकि संवेदन होता है सब जगह स्पर्श आदि का। सबसे बड़ी इसमें त्वचा है, वह स्पर्श का रूप में सारे शरीर को आच्छादित और साथ इसके पर्दे हैं शरीर के ऊपर। तो इसमें एक प्रकार से ज्ञान बाहक तंतुओं के बाद में ये त्वचा और इसके साथ में घ्राण इंद्रिय मानी गई छठी, छठे पदार्थ में। पांचवें पदार्थ तो है ज्ञान वाहक तंतु, सारे शरीर में जाल सा फैला हुआ। यहाँ आपको स्पर्श किया तो ये आपको पता लग जाता है किस चीज का स्पर्श है, हालांकि यहाँ भी पता लगता है, पर पैर भी बतला देता है स्पर्श से, कोई चीज नरम आदि, सांप बिच्छू लकड़ी पत्थर ईंट आदि, पैर भी इसको बतला देता है। तो यहाँ भी ज्ञान वाहक तंतुओं का संबंध जाल फैला हुआ है सारे शरीर में। तो ये गति वाहक और ज्ञान, क्योंकि प्राण का भी संचार है, अगर प्राण यहाँ संचार ना करे तो ये जड़ और पत्थर की तरह हो जाए और इसमें संवेदन ज्ञान ना हो। तो इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों साथ रह करके शरीर के पोषण में रहते हैं और इसको जीवित रखने में सहायक रहते हैं। तो ये पांच है ज्ञान और गति वाहक, और छठा इसके साथ में है ये नासिका घ्राण इंद्रिय और ये त्वचा। त्वचा भी स्पर्श इंद्रियों के अंदर वर्तमान है, और ये घ्राणे अंदर नासिका जो है ये भी ज्ञान इंद्रियों के अंदर वर्तमान है। तो ये दोनों ज्ञान इंद्रियों का संबंध इस सारे शरीर से रहता है, क्योंकि घ्राण तो पृथ्वी का सबसे बड़ा धर्म और गुण जो है सर्वप्रथम गंध है। ये जो गंध है सब प्रकार की, अगर इसको जमा कर कर करके इकट्ठा करा जाए तो शायद ये सब पृथ्वी का रूप बन जाएगी। अनेक प्रकार की सहस्रों प्रकार की गंध है, आपको प्रत्येक पदार्थ के अंदर सूंघने में आती, कोई चीज सूंघ लो, जो भी पृथ्वी के अंदर पदार्थ पैदा हुए हुए हैं सब में किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ गंध रहती है। तो पृथ्वी का सर्वप्रथम धर्म जो है वो गंध है। तो बाकी और इसके धर्म अलग हैं, आच्छादन इसके अंदर धर्म है, और किसी जल आदि को पकड़ कर रखने का इसके अंदर धर्म है, पृथ्वी के अंदर क्षमा रूप धर्म है, सर्वभोग्यता रूप धर्म है, अनेक प्रकार के इसमें भी 10-11 प्रकार के धर्म रहते हैं। तो उन धर्मों से ही ये वो धर्म ही हमारे शरीर में आए हैं। तो ये जो छठा भाग है इसमें इस त्वचा का भाग और घ्राण इंद्रिय का, क्योंकि गंध को तो ये ही बतलाएगी। अगर ये जैसे पीनस आदि रोग हो जाते, जुकाम आदि हो जाते हैं जबरदस्त है, तो ये गंध भी सूंघने में नहीं आया करती, कोल्ड वगैरह जब सर्दी बहुत हो जाती है। तो सारी चीजों के गंध को ये बताने वाली नासिका है, और ये स्पर्श इंद्रिय भी सारे इसके अंदर वर्तमान है। तो छठा भाग पृथ्वी का इसमें ये है। 1000 नाड़ियां संवेदन पहुंचाती हैं सारे शरीर के अंदर, और सातवां भाग है इसमें रस और रुधिर, क्योंकि रस के अंदर ये जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं पानी मिलकर के इसका मोटा रस बनता है, तो उन खाद्य पदार्थों में पृथ्वी का भाग होता है और जल का भाग होता है। अगर रस को भी आप सुखाएंगे, जो रस इसमें तैयार होता है, जिगर तिल्ली आदि रस तैयार करते हैं, बड़ी आदमी तैयार करती है, अगर उसको पकाया जाए तो उसमें पृथ्वी का भाग निकलेगा। तो इसलिए रस में भी पृथ्वी का भाग रहता है, और रुधिर के अंदर भी, खून के अंदर भी पृथ्वी का भाग रहता है, क्योंकि जब उसको सुखाते हैं जम जाता है नीचे, तो वो पृथ्वी का अंश होता है जो जमने वाली उसमें चीज होती है, ठहरने वाली। तो सातवां ये रहता है इसके अंदर और रस और रुधिर, और आठवां वो जो मैंने प्रातः काल मेद बतलाया था, मेद जो है और मज्जा, इनमें भी पार्थिव भाग है, मज्जा के अंदर चर्बी के अंदर भी पार्थिव भाग निकलता है, और वो जो हड्डियों का जो पोषण करता है वो भी इसमें, उसमें भी पृथ्वी का अंश होता है। तो ये पार्थिव भाग हैं, जल के साथ में मिलकर के अनेक प्रकार के रसों के रूप में बने हुए हैं। तो ये दो भाग ये और जाकर के छह दो ये आठ भाग हो जाते हैं, और वीर्य जो है ये नौवा भाग है पार्थिव का। इसमें भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, क्योंकि अगर वीर्य को भी सुखाया जाए तो उसमें पृथ्वी का अंश निकलेगा, और रज को भी अगर सुखाया जाए, शोषण किया जाए, उसमें भी पार्थिव अंश निकलेगा, और बाकी बहने वाला जल का अंश होगा। तो इन दोनों में भी जो कि हमारे जीवन का जन्म का हेतु बनते रज और वीर्य जा करके माता के गर्भाशय में, तो इनमें भी पार्थिव तत्व की प्रधानता होती है, और जल का अंश तो कोई थोड़ा होता है तो पृथ्वी तत्व ही प्रधान होता है। खाद्य पदार्थों का परिणाम विशेष सीमा रज और वीर्य बने खाद्य और पेय पदार्थों का, तो उनमें पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। इसके बाद में अंतिम जो दसवां भाग है वो मल का भाग है, टट्टी जो निकलती है सारे पदार्थ खा करके, तो दसवां भाग टट्टी का जो बड़ी आंत के अंदर रह करके कई घंटे में आहिस्ता आहिस्ता सरक करके मोटे भाग में मल के रूप में निकलता है। तो इन दस संस्थानों में पृथ्वी के भाग की प्रधानता है, और पृथ्वी तत्व ही इस सारे शरीर का पालन पोषण वगैरह करते हैं, जिस पर हमें इतना अभिमान है, इतना नाज है, जिसको हम इतना सुरक्षित रखे बैठे हुए हैं, और इसको अजर अमर बनाने की चेष्टा करते रहते हैं। तो भोगा आयातनम इदम शरीरम, भोग का आयातन घर और मोक्ष का आयातन घर ये हमारा शरीर है जो हमें प्राप्त हुआ है, ये इन पंचभूतों से ही बना है, जिनका कई दिन से मैं वर्णन करने पे भी आ रहा हूँ। तो अब इन दस प्रकार के पदार्थों का जो पृथ्वी के वर्णन किए हैं, इनमें एक एक को ले करके देखो कि क्या हमारी इस शरीर के जीवन का आधार ये है नहीं, चेतना शक्ति, क्योंकि अस्थियों का भी विकास होता है, भले ठोस और सख्त चीजें हैं परंतु इनकी में भी वृद्धि होती है। जैसे छोटा सा बच्चा इतना होता है तो उस अस्थियों का विकास होते होते, हम भी कभी इतने छोटे बच्चे थे, वो अस्थियां बढ़ बढ़ करके ही इतने बड़े 5-6 फुट के हम बन गए। तो अस्थियों के अंदर भी चेतना का आवास और निवास रहता है। इसी प्रकार ये जो हमारे अंदर नस और नाड़ियां आदि वगैरह चलती हैं निकल करके, इनमें भी चेतना का आवास रहता है, बिना चेतना के इनमें जीवन का संचार नहीं होता, अस्थि के अंदर भी और नस नाड़ियों के अंदर भी। मांस की पेशियों के अंदर जो वृद्धि और ह्रास होता है खाद्य पेय पदार्थों से, मोटी और पुष्ट बनती है, तो वहां भी चेतन सत्ता के बिना उसमें गति आदि, वृद्धि आदि, ह्रास आदि और वृद्धि आदि कुछ भी धर्म पैदा नहीं होंगे। चेतन इन सब का आधार है, तो चेतन की व्याप्ति को इसमें अनुभव करना चाहिए, जैसे जल के अंदर कर रहे थे, जैसे अग्नि के अंदर व्याप्ति को देख रहे थे, ऐसे इस पृथ्वी तत्वों में भी चेतन परमात्मा की और आत्मा की व्याप्ति को या स्थिति को या सत्ता को समझने का यत्न करना चाहिए। अस्थियों का हम विकास देखते हैं, ये जो नाखून हैं इनका भी विकास देखते बढ़ते हैं, और ये जो केस हैं ये भी महीने 10 दिन में 15 दिन में 2 महीने में बड़े बड़े हो जाते हैं, इनका भी विकास देखते हैं, इनकी भी वृद्धि देखते हैं। तो बिना चेतन, अगर ये चेतन सत्ता का इसमें अभाव हो जाता है जब शरीर मुर्दा होता है, नाखून और केस आदि भी बढ़ने बंद हो जाते हैं और अस्थियों का विकास भी। तो इस प्रकार का ये विकास चेतन के संविधान से इसमें हो रहा है। इसी प्रकार ये जो हमारी नसें हैं इनमें भी गति वगैरह सारे कर्म और व्यापार ये चेतना के आश्रय पर कर रही है। मांस की पेशियों में भी जो वृद्धि होती है हमारे लिए बल शक्ति का आधार बनी हुई है, यहाँ भी चेतना का आवास, चेतना की सत्ता मौजूद है। इसी प्रकार और जो ये त्वचा है और जो दूसरे भाग हैं, त्वचा के अंदर भी व्याप्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि बिना त्वचा के अंदर भी गति नहीं होगी बिना चेतन के संविधान से। ऐसे ही और जो भाग इसमें जितने भी 10 प्रकार के पार्थिव भाग हैं, ये चेतन के आश्रय रह करके ये सब गतिशील हो रहे हैं। तो इन 10 भागों के अंदर चेतना की आपको अनुभूति होनी चाहिए, चेतना की प्रतीति होनी चाहिए, चेतना का साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम सबसे मोटा भाग है, जल से भी मोटा है, अग्नि से भी। सबसे मोटा भाग तो यही है हमारे शरीर में पृथ्वी का, दूसरे हिस्से पर जल का भाग है, तीसरे पर अग्नि का तो माप तो नहीं होता, वायु का भी माप तो नहीं होता, जल और इसका तो गुरुत्व धर्म आप माप तो भी लोगे, तो इसलिए प्रधान रूप से ये पृथ्वी ही हमारे इस शरीर का आधार बनी। तो पृथ्वी में चेतना की अनुभूति होनी चाहिए, बाहर की भी पृथ्वी जैसे ये सारे लोक लोकांतर आदि जो है, ये सूर्य चंद्र आदि ये भी पृथ्वी के अंतर्गत कहलाते हैं। तो इस हमारे शरीर में तो जीव आत्मा की चेतन सत्ता इसके वृद्धि ह्रास आदि का हेतु बनती है, पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व भाग इसमें आया है, और ये जो स्थूल भाग लोक लोकांतर है सर्वव्यापक कोई चेतन सत्ता इनके गर्भ में अंदर और बाहर ठहर करके इनकी गति का हेतु बनी हुई है। आप आकाश को भी इनमें गति का हेतु कह सकते हैं, शरीर को भी, पर आकाश में इस प्रकार की जीवनी शक्ति नहीं है जैसी कि जीवनी शक्ति एक प्रकार से चेतना में अनुभूत होती है जीवात्मा में या परमात्मा में। तो आकाश जड़ पदार्थ है और ये चेतन है, चेतन और जड़ का संयोग ही गति का हेतु बनता है। सो हमारे जीवन में जितनी भी गतियां हो रही हैं, जो प्राण आदि की क्रिया हो रही है, जो संवेदन अंतःकरण के द्वारा ज्ञान बुद्धि चित्तादि के द्वारा हमें ज्ञान हो रहा है, ये सब चेतन के आश्रय हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के चेतन का आपको अपने शरीर में भी साक्षात्कार करना होगा और इस ब्रह्मांड के अंदर भी साक्षात्कार करना होगा। फिर आपको ये देखना होगा कि इस चेतना में और बाहर की चेतना में क्या अंतर है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप खुद बतलाना, खुद समझना, मेरे कहने से आपको संतोष नहीं होगा इस शरीर की चेतना में और ब्रह्मांड की चेतना में क्या अंतर है। यहाँ न करके बहुत से ऋषि मुनि भ्रांत से हो जाते हैं या जैसा कुछ समझ में आता है, कोई तो कहने लगते हैं एक ही आकाश के समान सर्वत्र चेतना है, कोई कहते हैं अगर एक आकाश के समान सर्वत्र चेतना एक जैसी समान है तो पृथ्वी में भी इसी प्रकार के ज्ञान क्रम व्यापार होने चाहिए जैसे हमारे शरीर में। तो इस शरीर के अंदर क्यों ज्ञान और कर्म भिन्न रूप से होते हैं और पृथ्वी में क्यों भिन्न रूप से होते हैं, ये शंका वहाँ उपस्थित होती है। परंतु अगर देखा जाए उस पृथ्वी में एक ही सर्वव्यापक चेतना है, अगर चेतना का विभाग किया जाए तो यहाँ एक जीवात्मा की चेतना है और एक परमात्मा की चेतना है, इसलिए विलक्षण कर्म व्यापार और ज्ञान इस शरीर में देखने में आते हैं। प्रकार की सूक्ष्म मेधा और बुद्धि आपको ध्यान के द्वारा अभ्यास के द्वारा बनानी करनी होगी, जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को भी समझ सको। अगर इस घड़ी की तरह स्थूल चीज होती आत्मा या परमात्मा और एक देश में रहने वाली चीज होती और मोटी चीज होती, आंखों से विशाद दिखा देते, समझा देते, पर वो तो इतनी सूक्ष्म चीज है कि उससे परे और कोई सूक्ष्म चीज है ही। तो इतनी सूक्ष्म वस्तु क्या नाम आंख का विषय नहीं बनेगी? हाँ, वो तो बुद्धि की आंख का विषय बनेगी। तो बुद्धि इस आंख के स्थान में आप बुद्धि की आंख को लाओ, तो बुद्धि की आंख ही निर्णय कर देगी। इस आंख में तो भ्रांति भी हो जाती है, कोई इसमें नुक्स पैदा हो जाए तो ये एक के दो दो भी दिखाने लगती है, वो बुद्धि भी भ्रांत हो जाती है, भ्रांति सम्य हो जाती है। परंतु जो निर्णय इस आंख से नहीं होते वो निर्णय बुद्धि की आंख कर देती है। अति सूक्ष्म पदार्थों का भी वो निर्णय करती है और बहुत दूर पदार्थों का भी वो निर्णय करती है और बहुत नजदीक पदार्थों का भी वो निर्णय करती है। तो इसलिए इस प्रकार की मेधा बुद्धि को पैदा करो आप अपने अपने मस्तिष्क के अंदर, जो खुद छान दीन खोज कर करके इस पंचभूतों की देह में पुतले में आपको अपने स्वरूप को भी दिखा दे वे बतला दे और भगवान के स्वरूप को भी दिखा दे और बतला दे। जब तक ये बुद्धि और मन और अहंकार अंतःकरण रहेंगे तुम्हारे अंदर, तब तक अपने आप को परमात्मा से अलग सिद्ध करते रहोगे, क्योंकि अलग सिद्ध करने के लिए ये जो अहंकार है यही भेद का हेतु बना रहता है, जो अहम अस्मि का बोध कराता है ये मैं हूं। तो जब तक अहंकार वर्तमान हमारे अंदर रहेगा तब तक ये भेद ज्ञान दूर नहीं होगा, परमात्मा से सदा हमें अलग ही बनाए रहेगा और भोक्ता और कर्ता बनाए रहेगा, ज्ञाता और अज्ञाता बनाए रहेगा। जब ये अहंकार की भित्ति दूर हो जाएगी, उसके बाद की बात हम नहीं कहते कि यही आत्मा वो होगा या वो परमात्मा ये होगा, उसको हम नहीं कह सकते। केवल हमारे भी अनुमान है, कुछ बुद्धि की विवेचना से देख रहे हैं, इसका अलग अस्तित्व कुछ समझ में कम आता है, क्योंकि अगर इसको सावेव इस चेतना को मानते हैं शरीराभिमानी को, तो और एक इससे भी सूक्ष्म माननी पड़ेगी जो इसको व्याप्त कर करके इसको भी गतिशील बनाए रखे। तो अगर इस चेतना को हम सावेव मानेंगे तो इसका कोई उपादान कारण मानना पड़ेगा, इससे सूक्ष्म मानना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो भ्रांति हमारे अंदर होती चली जा रही है या हुई है या होगी, तो उनको दूर करना है। इसके लिए मेरे तर्क भी आपके इतने काम नहीं आएंगे, स्वयं तुम्हारी बुद्धि जो है स्वयं ही वहां तर्क वितर्क पैदा करके स्वयं ही अनुसंधान करेगी। आचार्य लोग वेद शास्त्र आदि ये शब्द प्रमाण के रूप में हुआ करते हैं, समझे। शब्द प्रमाण जो होता है वो कहता है सब बातों के विज्ञान को कहते हैं, परंतु एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी हुआ करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रित शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण हुआ करते हैं। तो अब प्रत्यक्ष तो होता है सब सर्वसाधारण को, आत्मा और परमात्मा प्रत्यक्ष का विषय सर्वसाधारण के, इन लोगों के लिए तो शब्द प्रमाण और अनुमान ही काम देगा। परंतु जब पूर्ण योगी हो जाओगे, रितम भरा बुद्धि पैदा हो जाएगी, तब जाकर के स्वयं निर्णय करने की योग्यता होगी आत्मा परमात्मा को इस शरीर में देखने की, भिन्न रूप से या अभिन्न रूप से, एक रूप से या अनेक रूप से। तो ये आप निर्णय कर लेना, फिर वो सब आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार गुरुजन जो हुआ करते हैं वो शिष्यों को शब्द प्रमाण के रूप में, अनुमान प्रमाण के रूप में, और प्रत्यक्ष रूप भी अयम अस्ति, ये ऐसे ऐसे भी कैसे, ये परोक्ष रूप से ही वर्णन करेंगे। शब्द प्रमाण भी परोक्ष रूप से वर्णन करता है और गुरु का भी शब्द प्रमाण भी परोक्ष रूप से ही वर्णन करता है। ये नहीं मैं कह सकता हूं या गुरुजन लो भाई ये तुम्हारा आत्मा, ये परमात्मा पकड़ लो, तो ये वो परमात्मा ऐसा है, हाँ ये आत्मा ऐसा है। अब ये मेरा है आपका है, यहां भी परोक्ष सा बन जाता है। तो मैं अगर मैं ये कहता हूं कि ये आत्मा मेरा ऐसा है, तो ये आपसे तो भिन्न है ना, तो इसलिए मैं आपके आत्मा को भी परोक्ष रूप से, भाई आपका आत्मा ऐसा है या परमात्मा ऐसा है, परमात्मा तो दोनों का मिला जुला है। आत्मा में भिन्न भिन्न रूप से भावना हमारे अंदर पैदा हो रही है, अहंकार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो ये इस प्रकार का अनुभव आप स्वयं कर लेना जिस वक्त आपकी समाधि की अवस्था होगी, कि कौन सी भित्ति है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में खड़ी हुई है। उस भित्ति को जब तोड़ दोगे, उसका न मुझे पता है, आपको भी शायद पता नहीं होगा, मुझे बता नहीं सकोगे, टूट जाएगी। तो अगर मेरी टूट गई तो मैं भी नहीं बता सकता, किसी और ऋषि मुनि की टूटी तो कौन सी भित्ति टूटी है जो दोनों के बीच में खड़ी थी, तो वो अज्ञानता रूपी भित्ति है। अगर ये अज्ञानता अविद्या दूर हो जाएगी तो अविद्या ये अंतःकरण ही है। चार प्रकार का अंतःकरण, ज्ञान का उपादान कारण प्रकृति, ये अविद्या के रूप में है। तो ये अविद्या की भित्ति कब टूटेगी ये तो हम नहीं कह सकते, मेरी भी नहीं टूटी, क्योंकि विद्या का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं, परमात्मा का कोई अंत नहीं, कुछ न कुछ अंश रूप में मेरे सामने भी भित्ति खड़ी है। एक देशी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ ही है। तो इसलिए जितने ऋषि मुनि पैगंबर आदि हुए हैं सर्वज्ञ नहीं बने सकते, इसलिए आचार्यों ने अल्पज कह करके अपना पीछा छुटा लिया। अल्पज का ये नहीं, अल्पज कहते थोड़ा ज्ञान,
अल्पज का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही अंधा है, कुछ जानता ही नहीं, अल्प थोड़े को कहते हैं। तो इस शरीर में तो थोड़ा ही तो ज्ञान समाएगा, कितना इसमें रह सकता है। छोटे से आत्मा में इस शरीर के अगर यहाँ अणु भी मान ले तो अणु में कितना ज्ञान समाएगा। अगर इस शरीर में विभू भी आत्मा को मान ले तो इतने 5-6 फुट के पुतले में कितना ज्ञान समाएगा। अनंत ब्रह्मांड पड़ा, अनंत भगवान पड़ा है। तो ये तो एक प्रकार से ये इस शरीराभिमानी तो अल्प ही रहना, चाहे अणु कहो चाहे अल्प कहो चाहे शरीर के बराबर इतना बड़ा लंबा चौड़ा कह लो, इसमें भी सर्वज्ञता नहीं आएगी। तो भाई हम तो जितना समझ पाए वो कह रहे हैं, इधर उधर की गप्पे हमारा मानने को चिन्ह नहीं करता। जो मेरे मस्तिष्क में आता वही कह रहा हूँ, तुम्हारे में भी आ जाए तो तुम ठीक समझ लेना इतने।